सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 330 जीव कांड की अर्थ संदृष्टि अधिकार लेक्चर नंबर 30। ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वैचायाणं। नमो लोए सौवसाहूणं। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय गिणिन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्चम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यह हिंदी अनुवाद है। उसमें अभी हम अर्थ संदृष्टि अधिकार देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 949। अपना भी योग मार्गणा का अधिकार शुरू है। हमने देखा था कि ये जो पांच अलग अलग शरीर है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमा, हर समय में जीव उसके जो परमाणु ग्रहण करता है, एक जीव को एट ए टाइम औदारिक वैक्रिक नहीं है, परंतु जिसको जो शरीर है, तेजस कारमान तो सबको है। देव और नारकियों के कौन सा है? वैक्रिक। और मनुष्य तिरियंचों के औदारिक है। और आहारक वृद्धिधारी वालों के, जब वो आहारक शरीर बनता है तो उसके आहारक के भी परमाणु ग्रहण होते हैं। तो उसका जो समय प्रबद्ध है, समय प्रबद्ध ने एक समय में बंधने वाला ये जो कुछ परमाणुओं का समूह है, उसकी जो संख्या है, उसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध। उसकी वैल्यू कितनी है हरेक की तो हमने देखी थी। औदारिक का समय प्रबद्ध सबसे छोटा है, उससे वैक्रियक का असंख्यात गुना है, उससे आहारक का असंख्यात गुना है, उससे तेजस का अनंत गुना है और उससे कारमान का अनंत गुना है। ये समय प्रबद्ध हुआ। एक एक समय प्रबद्ध में क्या है तो अनंत वर्गणा होती है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। यहाँ जब हम वर्गणा कहते हैं, वो अनुभाग वाली वर्गणा नहीं समझना, यहाँ वर्गणा से समझना उसका स्कंध। आहार वर्गणा जब कहते हैं तो विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणुओं का जो समूह है उसको यहाँ आहार वर्गणा कहेंगे। आहार वर्गणा में से औदारिक शरीर बनता है, वैक्रियक शरीर बनता है और आहारक शरीर बनता है। फिर भी जिन वर्गणाओं से आहार वर्गणा तीनों का नाम है, जिन वर्गणाओं से औदारिक शरीर बनता है वो वर्गणा कैसी है? उसमें परमाणु कम है और उसका साइज बड़ा है। आगे आगे वाले परमाणु ज्यादा है और साइज छोटा है स्कंधों का। उसकी अवगाहना कही, उसकी साइज है ना अवगाहना, ये तो हमने टेबल में देख लिया है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब परमाणु ग्रहण होते हैं तो सत्ता में पड़े रहते हैं, तो बंधते समय उसमें निषेक रचना होती है। परमाणु का साइज नहीं, परमाणु का साइज तो बदलेगा ही। औदारिक का परमाणु हो या कारमान का परमाणु, परमाणु तो परमाणु है, उसका साइज एक प्रदेश ही है। एक प्रदेश में, हाँ अच्छा किया पूछ लिया। यहाँ तो अधिक नंबर ऑफ परमाणु है, अनंत गुणे हैं, फिर भी उसका सूक्ष्म परिणाम है और वो छोटी अवगाहना है उसकी, यानी छोटी जगह में अधिक परमाणु। परमाणु परमाणु एक दूसरे को अवगाहना देते हैं। आगे आगे वाले जो स्कंद है, वर्गणाएं हैं, वो कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म है, उसकी अवगाहना छोटी है, उसमें परमाणु अधिक अधिक है। हम देख रहे हैं कि निषेक रचना होती है, यानी एक समय में जितने परमाणु ग्रहण किए हैं उसका पहले समय में जितने उसमें से निकल जाएंगे, दूसरे समय निकलेंगे, तीसरे समय निकलेंगे, तो समयों के अनुसार, स्थिति के अनुसार उसकी रचना, निषेक रचना होती है। मात्र कर्मों में ही स्थिति पड़ती है ऐसी नहीं है, तेजस शरीर में भी उसकी स्थिति निश्चित होती है, औदारिक शरीर के परमाणुओं की भी स्थिति है। क्योंकि हम क्या है, जन्म के समय से लेकर हर समय, जन्म है ना कौन सा, वो हॉस्पिटल वाला नहीं, हाँ, अन्य कहीं पर्याय से मरकर विग्रह गति समाप्त होने के पश्चात शरीर के साथ जो संयोग होता है, परमाणुओं के, शरीर के परमाणुओं का ग्रहण होना, उसको भव की शुरुआत हुई कहेंगे या वहां जन्म कहेंगे उसको। और ये हम जो गर्भ से निकलने रूप जो जन्म है, वो बात हमें लौकिक में हम कहते हैं, हमारे जन्म दिनांक क्या है, फिर उसके वो बर्थडे मनाते वगैरह हैं। तो यहाँ क्या हो रही है बात, कि उस समय से ही उसमें स्थिति भी पड़ती है। औदारिक शरीर में कितनी स्थिति पड़ेगी बोलो, मैक्सिमम नहीं पूछी, किसी भी जीव के औदारिक शरीर के जो परमाणु पहले समय में ग्रहण किए जीव ने, तो उसमें स्थिति कितनी पड़ेगी, ये मेरा प्रश्न है। बोलो नितिन भाई, समय प्रबद्ध तो नंबर ऑफ परमाणु है, वो कितने काल तक जीव के साथ रहेंगे, कोई ना कोई निषेक, नहीं नहीं नहीं, एक हाँ देखो, वो आयु कर्म बांध के आया है। अभी कोई मनुष्य में जन्म लिया है किसी ने, और 100 साल की आयु उसने पूर्व भव में बांधी है मनुष्य आयु, तो पहले समय में जितने वो परमाणु ग्रहण करेगा उसके कितने निषेक बनेंगे, तो 100 साल के जितने समय है उतने, और हर समय में एक एक निषेक खेरेगा, अन्य नए नए परमाणु ग्रहण होंगे। तो औदारिक शरीर की स्थिति कितनी है, उस एक भव संबंधी जो आयु है, उर्वरित आयु जितनी है, उर्वरित आयु क्यों, हाँ बची हुई, क्योंकि 80 साल हुए, अभी 100 साल की आयु बांध के आया था, 20 साल उसके बाकी है, तो 80 साल होने पर जो परमाणु ग्रहण करेगा उसमें स्थिति कितनी पड़ेगी, 20 साल की। नहीं समझे, देखो देखो देखो, पहले समय में जो ग्रहण किया था ना, जब उसने यहाँ आया था जन्म लेने के लिए, तो कितने उसके जो परमाणु ग्रहण हुए, उसकी जो निषेक रचना हुई, वो 100 साल के प्रत्येक समय में एक एक समय में हुई। अब उसके 50 साल बीत गए, 100 साल के 1 लाख समय मान लेंगे, तो 1 साल के लिए कितने माने उनका हिसाब एक वर्ष के लिए 1000 किया, तो 100 वर्ष के लिए कितने किए, 1 लाख हो गया। इस हिसाब से
पहले समय में जो बंदा हुआ, समय प्रबंध था, कुछ परमाणु 1 लाख।
हाँ देखो, हम यहाँ समझेंगे बोर्ड पर, क्योंकि पहले समय में जीव जो ग्रहण करता है, अब यहाँ तो हम समयों में ही आयु गिनेंगे, क्यों, पहले समय में जो उसने ग्रहण किए, ये शरीर के परमाणु की बात चल रही है, इतनी उसकी आयु है। पहले समय में जो औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण किए, तो हर एक समय में एक एक निषेक था उसका। दूसरे समय में ग्रहण किए, उसका एक ऑलरेडी समय बीत गया आयु में, तो यहाँ के जो समय प्रबद्ध ग्रहण किया, उसके निषेक रचना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। अब यहाँ पर उसने 50 साल हो गए उसके, ये सारे बीत गए ना उसके, ये निषेक तो खिर गए उसके। अब यहाँ पर नया जो समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा, उसकी निषेक रचना कितनी होगी, तो जितनी रिमेनिंग आयु है उतनी। ये बात ख्याल में आती है, क्योंकि यहाँ तक उसके 50 साल बीत गए हैं, 50 साल बाकी है, तो यहाँ ये ऑलरेडी है और थे और खिर भी गए, ऊपर का इसका पड़ा है, पुराना पड़ा है, पुराने एक एक समय में 50 साल के प्रत्येक समय में जो जो समय प्रबद्ध ग्रहण किए थे और कर ही रहा था, उसके 50 साल के रिमेनिंग है हर एक समय के ग्रहण किए हुए, यानी स्टॉक कितना होगा ना, परंतु यहाँ ग्रहण किए हुए कितने, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 50 साल में, अब यहाँ उसके 10 साल बाकी है, तो जितने समय प्रबद्ध जो समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा वो 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, सेकंड लास्ट समय में, दो समय में होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। मरण के समय में भी जो ग्रहण करेगा पूरा एक समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा, और जन्म के समय से लेकर हर एक का एक एक निषेक पड़ा है, ये सारे शरीर रूप से पड़े हैं, जीव ही उसको छोड़कर चला जाएगा, मरेगा ना, परमाणु पड़े रहेंगे। ख्याल भी आती है बात, हाँ ये तो हमेशा रहेगी उसमें, हाँ हर एक समय का एक एक निशे, मगर ये छोटा छोटा है, हर एक का मिलकर भी उसका सब टोटल उतना हो जाएगा। कभी भी ग्रहण करो तो डेढ़ गुना निगुणित समय प्रबद्ध रहता है, ये राउंड अबाउट उसका ख्याल में। ये औदारिक की बात चल रही है यहाँ पर, एक ही भव के लिए है, भव के अंतिम समय में, यानी भव का अंतिम समय निश्चित है कि नहीं है, तो औदारिक शरीर में जो स्थिति बंधी है वो भव के अंतिम समय तक ही स्थिति है, उस परमाणु के उसके निश्चित नेक्स्ट समय की जो उसकी जो कुछ अवस्था बननी है वो निश्चित है, उस जीव के साथ उसका संबंध रहने वाला नहीं है। हम तो यहाँ तो आयु बढ़ाना चाहते हैं ना, तो कर्म में तो बढ़ गया मान लेते, बढ़ता नहीं है फिर भी बढ़ गया, और शरीर के परमाणु निकल गए क्योंकि उनके तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जीव के साथ, वो एक समय के लिए भी बढ़ेगा नहीं। ये तो हुई औदारिक की, ऐसी वैकृत की बात, आहार की भी ऐसी होती, वो तो अंतर्मूर्त के लिए होते हैं। अब रही तेजस की बात, तेजस तो एक भव पूर्ता नहीं बनता, वो तो मैक्सिमम उसकी 66 सागर है, यथा योग्य जितना बंधेगा उतना बंधेगा। कर्म में 66 सागर, वो उत्कृष्ट स्थिति मैक्सिमम किसी के बंधेगी तो उसमें भी वो योग लगेगा ना उसका, यथा योग्य वहां भी तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से नए तेजस परमाणु ग्रहण करता है, और उसमें यथा योग्य स्थिति पड़ती है, उससे जीव के राग आदि में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की। कर्म की जितनी चर्चा आती है वैसे तेजस शरीर की नहीं आती। कर्मण में क्या होता है, कर्म में क्या होता है, स्थिति पड़ती है, वो कितनी पड़ती है तो हमने देखा, जैसे उस जीव के मिथ्यात्व और राग द्वेष परिणाम हो गए, जिसको कहेंगे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों के कारण, इसको मिलकर कहेंगे कषाय, इस कषाय के कारण स्थिति का बंध होता है। यहाँ हमारी बात स्थिति की चल रही है, तो ये कितनी स्थिति बांधता है उसकी बात यहाँ चलेगी, तो कर्मों की स्थिति तो अनेक भवों तक चलेगी। जो निषेक रचना होती है हर एक में, हर एक के शरीर, ये प्रत्येक शरीर में, वहां क्या होता है, ये जो निषेक रचना बनी है, नीचे के निषेक में अधिक परमाणु है, दूसरे निषेक में थोड़े कम, ये जो फिक्स डिफरेंस है उसको चय कहते हैं, एक चय कम, दो चय कम, तीन चय कम, करते करते यहां से जहां आधी हो जाती है संख्या, वहां तक के जो निषेकों की संख्या है या समयों की संख्या है उसको कहेंगे एक गुणहानि। ऐसे यहाँ एक गुणहानि हुई, दो गुणहानि, तीन गुणहानि, चार गुणहानि, जितनी होती है उसको कहेंगे नाना गुणहानि। हाँ, आयु कर्म में ऐसी गुणहानि होगी ही, ऐसी कह नहीं सकते हैं क्योंकि आयु तो अलग अलग है ना। आयु का कर्म, आयु कर्म का बंध कितना होता है, जो आयु का कर्म बंधा है तो वो एक ही आयु के लिए बनता है, किसी का अंतर्मूर्त प्रमाण बंधेगा और उसमें तो गुणहानि बनेगी भी नहीं, और किसी का कितना बनेगा, 33 सागर का बनेगा, वैसे सभी कर्मों की गुणहानि समान है, आयु कर्म में भी होगी, वो कितना है, पल्ले का असंख्या प्रभाव, यानी इतना काल इतने समय जाने पर परमाणु आधे हो गए, फिर आधे हो गए, नाना गुणहानि प्रत्येक कर्म की अलग होगी। देखो हम मान लेते 48 समय की स्थिति बंधी है, एक गुणहानि का प्रमाण हमेशा हम 8 लेते हैं समझाने के लिए, तो नाना गुनहानी कितनी हुई? 6 हुई। यदि वहाँ 48 के बदले हम 480 लेंगे कर्म की स्थिति, तो क्या होगा? 60 हो जाएगी। यानी नाना गुनहानियों की संख्या बदलेगी, क्योंकि किसी कर्म का बंध तो 70 कोड़ा कोड़ी है, किसी का 40 कोड़ा कोड़ी है, किसी का 20 कोड़ा कोड़ी है, अलग अलग जो है, कभी कभी अंत कोड़ा कोड़ी बंध होता है। फिर भी हर जगह गुनहानि का प्रमाण वही रहता है, परंतु नाना गुनहानि जितनी स्थिति बंधेगी उसके अनुसार अलग अलग होगी। यहाँ जो हम जो संदृष्टि वगैरह देख रहे हैं वो मैक्सिमम स्थिति कंसिडर करके वहाँ देख लेते हैं। अब इसके हम संदृष्टि देख रहे थे और उसका विशेष अर्थ हम 949 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन में। यहाँ तो ये जो टर्मिनोलॉजी जो नाम आते हैं, एक है द्रव्य, द्रव्य ने एक समय प्रबद्ध का टोटल जो इन सब की मिलकर जो संख्या है उसको कहेंगे द्रव्य, जितने निषेक बने उसको कहेंगे स्थिति। दो संख्या ख्याल, दो शब्द ख्याल में है ना, एक है द्रव्य और एक है स्थिति। फिर उसका चय कितना है, गुनहानि तो हमने नाम सुना ना अभी, गुनहानि और नाना गुनहानि। फिर यहाँ चय कितना है, ये सब कैसे निकालना वो भी हमने देखा था, चय ने फिक्स डिफरेंस कितना है वो भी निकाल सकते हैं। एक शब्द आता है दो गुनहानि, एक गुनहानि का जो प्रमाण है उसको डबल करेंगे तो दो गुनहानि होगी। अभी यहाँ पहले निषेक में कितने परमाणु है उसकी भी संख्या कैसे डिराइव करने, कैसे निकालने, उसका भी गणित उन्होंने बताया था। हम फिर दोबारा उसको रिविजन करेंगे, क्योंकि ये विषय ऐसा है ना, गणित का है और नया विषय है, पहले सुना नहीं है इसलिए क्लिष्ट लगता है। तो हम अपना अंक संदृष्टि देखते हैं, यानी उसके अपने काल्पनिक संख्या लेकर हम देखेंगे। मान लेते हैं ये समय प्रबद्ध पूरा, ये द्रव्य हमारा 6300 तो हमें द्रव्य मालूम हो गया। स्थिति कितनी है तो मान लेते 48 है स्थिति। एक गुणहानि कितनी है तो 8 है। दो गुणहानि कितनी होगी नितिन भाई? 16। अब हमें चय निकालना है। नाना गुणहानि कितनी होगी? स्थिति 48 है और गुणहानि 8 है, 48/8 6 हो जाएगी। अब हमें एक संख्या निकालनी है जिसका नाम है अन्योन्य अभ्यस्त राशि। वो कैसे निकालना है? तो जो नाना गुणहानि है, जो अभी हमने 6 देखी थी, 6 बार 2 लिखो, आपस में गुणा करो, कितना होगा बेटा? 64 होगा। तो 64 ये हमारी अन्योन्य अभ्यस्त राशि है। टोटल द्रव्य हमने 6300 मान लिया है, तो पहले में पहले क्या करना है? तो 6300/ अन्योन्य अभ्यस्त राशि 64 में से एक माइनस करो, 63 हो जाएगा। तो 6300/63 आया, 100 आ गए। तो यहाँ हमने जो 6 गुणहानियां देखी अलग अलग, तो ये अंतिम पूरे गुणहानि का प्रमाण कितना आया उसका द्रव्य का? तो कहते हैं 100। तो गुणहानि गुणहानि प्रति आधा आधा होता गया था। हम उल्टे क्रम से नीचे आएंगे तो यहाँ 100 है, उसके नीचे 200, 400, 800, 1600 और 3200। ये 3200 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ 100 है, 100 को हमारी अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है? 64 है, तो 64 के आधे से गुणा करो, 32 से गुणा करो, तो 3200 क्या हुआ? पहले पूरी गुणहानि 8 निषेकों का मिलकर जो प्रमाण है द्रव्य का, ये 3200 आया। अभी कहीं भी किसी भी गुणहानि के पहले निषेक का द्रव्य हमको निकालना है, उसके लिए पहले में पहले क्या करना? उसका एवरेज निकालना। 3208 में मिलकर 3200 संख्या आई है, तो एवरेज कितना होगा? / 8 400। उसको अपनी यहाँ भाषा में क्या कहते हैं? मध्यधन। मध्यधन यानी एवरेज, 400 आया। अब इस 400 को विशिष्ट संख्या से भाग देना है। वो संख्या कैसे निकालते हैं? तो दो गुणानी कितनी है? 16। 16 में से क्या माइनस करना है? तो हमारा चय कितनी बार घटा है? 7 बार घटा है। तो गुणहानि में से एक कम करो और उसका आधा करो, 7 द्वितीयांश। 16 में से ये 7 द्वितीयांश माइनस करना, 12.5 कहो या 25 द्वितीयांश कहो। 16 माइनस 3.5, 12.5 आ गए। उसको हम ऐसे स्प्रेड करके देखेंगे तो 25/2। हमने वो जो 400 निकाला था ना मध्य धन एवरेज, डिवाइडेड बाय 12.5, यानी ऊपर 2 आएगी, नीचे 25 आएगी। उल्टा करके गुणा करते हैं ना, तो उसकी संख्या कितनी आएगी? 32 आएगी। ये हुआ हमारा चय। ये कोई याद नहीं करना है, चय 400 डिवाइडेड बाय 25 16 आते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 2 32 आते हैं। 32 हमें चय मिल गया। अभी हमें पहला निषेक निकालना है। तो पहला निषेक निकालने के लिए कल आपने क्या लिखा है वहां जरा पढ़ो अमोल। बहुत अच्छा, चय इंटू 2 गुणानी, बहुत अच्छा। फर्स्ट निषेक निकालने के लिए चय इंटू 2 गुणानी, चय अपना 32 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 512। पहला निषेक का प्रमाण होगा। दूसरे निषेक में क्या होगा? एक चय कम होगा। 3208 का मिलकर प्रमाण था, यानी 512 प्लस दूसरे में 32 कम, फिर 32 कम, फिर 32 कम, इस तरह से सबकी टोटल 3200 आई थी। अब हमें हर एक निषेक की अलग अलग चाहिए, तो पहले निषेक के लिए क्या करना? ये पहले गुणहानि का जो चय है, हर एक गुणहानि का अपना अपना चय आधा आधा होगा। ऊपर नीचे के गुणहानि का चय हमने कितना निकाला? 32। 32 को 2 गुणहानि से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 से गुणा करेंगे तो पहला निषेक आ जाएगा। 15 से गुणा करेंगे, यानी 2 गुणहानि में से एक कम, दूसरा निषेक आएगा। 14 से गुणा करेंगे, तीसरा निषेक आएगा। 13 से गुणा करेंगे, चौथा। 12 से गुणा करेंगे, पांचवा। फिर 11 से गुणा करेंगे, छठवा। 10 से गुणा करेंगे, सातवा। और 9 से गुणा करेंगे तो 8वा होगा, यानी अंतिम निषेक होगा उस गुणहानि का। कल हमने वही सूत्र लिखा था, पढ़ो वहां। अंतिम निषेक निकालने के लिए चय को किससे गुणा किया था? हाँ, 1 गुणहानि + 1, यानी 8 + 1 = 9। अभी हमने वही निकाल के दिखाया आपको। तो अंतिम निषेक इज इक्वल टू चय, देखो अंतिम निषेक इज इक्वल टू चय मल्टीप्लाइड बाय गुणहानि + 1। गुणहानि के लिए हमने गु लिखा था, गु के ऊपर 1+ की साइन करना है। अभी ये सारी ही बातें यहाँ विशेषार्थ में देखेंगे, यहाँ की संदृष्टि के सहित। ये 6300 वाला मामला तो हमने अंक संदृष्टि में देखा था, और यहाँ हम अर्थ संदृष्टि देख रहे हैं, इन यथार्थ में। अब विशेषार्थ पढ़ेंगे 949 पृष्ठ पर, नीचे से दूसरी लाइन। समय प्रबद्ध, उसके लिए अपनी संदृष्टि है स। स यानी सर्व द्रव्य, उस समय बंधा हुआ। अन्योन्य अभ्यस्त राशि के लिए अ लिखा। ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि लक्ष्मीबेन कैसे निकालते हैं, याद है? हाँ, बहुत अच्छा। जितने नाना गुणहानि है उतनी बार 2 लिख के आपस में गुणा करो, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती। अंतिम गुणहानि का द्रव्य, द्रव्य की बात है, पूरे अंतिम गुणहानि। यहाँ 6 गुणहानियां है, नाना गुणहानियां 6 है, सबकी टॉप मोस्ट जो 8 निषेक है उसका मिलकर द्रव्य कितना है? तो कहते हैं समय प्रबद्ध, यानी पूरा द्रव्य। समय प्रबद्ध मत कहो इसको अभी, यहाँ पूरा द्रव्य, यहाँ उसकी टर्मिनोलॉजी है द्रव्य। तो द्रव्य स डिवाइडेड बाय एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि। अपना उदाहरण ख्याल में रखना, 6300 डिवाइडेड बाय 63, क्योंकि हमने 64 में से एक कम किया था। यहां तक ख्याल में आई बात? उपांत गुणहानि का द्रव्य ऐसा, जैसे हमने ऊपर कितना होगा, डबल होगा, 100 को 2 से गुण, 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। यहाँ क्या किया देखो, 100 को जो एक कम असंख्यात से भाग दिया था और मल्टीप्लाइड बाय 2 मिला, एक कम सॉरी असंख्यात नहीं, मैंने असंख्यात बताया क्या, अन्योन्य बस राशि, अ अ एक कम अन्योन्य बस राशि, हाँ सुधारना, ऐसा कोई बोलते बोलते कुछ गलत बोला जाता है। तो उपांत गुणहानि का द्रव्य कैसा है, स डिवाइड बाय एक कम अ, यानी अन्योन्य बस राशि, और उसके गुणा किया 2 से, डबल हुआ ना उपांत, नीचे नीचे दो गुना होता चला जाएगा। पहले गुणहानि का द्रव्य, पहले ने नीचे से सबसे पहले ऊपर से शुरू किया था, तो नीचे की कैसे निकालना, यहाँ तो हमारी 6 ही थे, तो 6 बार दो गुना करेंगे, 5 बार करेंगे भाई, हाँ क्योंकि ऊपर के तो फिक्स रखेंगे ना, और नीचे आते थे 6 गुना नहीं है तो 5 बार डबल डबल होगा, यहाँ वही कह रहे हैं 5 बार डबल होगा। पहले हमने अन्योन्य व्यस्त राशि में 6 बार 2 लिखा था, उसमें एक बार का 2 निकाल दो तो क्या होगा, अन्योन्य व्यस्त राशि का आधा हो जाएगा, तो यही यहाँ लिखा है। पहले गुणहानि का द्रव्य स डिवाइडेड बाय एक कम अन्योन्य व्यस्त राशि, और उपांत के लिए हमने 2 से गुणा किया था, यहाँ किससे गुणा करना, अन्योन्य व्यस्त राशि के आधे से गुणा करना, हाँ अपने गणित में हमने 32 से गुणा किया था, 100 को 32 से गुणा करके डायरेक्ट हमारे 3200 आए थे। ये पहले गुणहानि का द्रव्य, द्रव्य ने 8 निशेकों की टोटल। पहले गुणहानि का मध्यधन, मध्यधन यानी एवरेज, एक गुणहानि में जितने निशेक है उसके लिए यहाँ वो लिख दिया है गुणहानि, उसका जो प्रमाण है। तो यही जो पहले गुणहानि का द्रव्य है ना, ऊपर स और अ लिखा और नीचे एक कम और 2 लिखे, उसको और भागार में गु, हाँ और भागार में रख दो उसको, तो इसका अर्थ होगा मध्यधन एवरेज, यानी 3200 को हमने 8 से भाग दिया था तो हमें एवरेज मिला था, यानी मध्यधन मिला था 400। आपको चाहिए तो वहाँ अपनी संख्या लिखो उसके बाजू में, पहले से हमने शुरू किया था, देखो समय प्रबद्ध स लिखा था, वहाँ हम 6300 लिखते हैं समझने के लिए, हाँ अमोल 949 पृष्ठ नीचे पेंसिल से लिखो कैसे भी, अ अ की वैल्यू कितनी थी अपनी, 64 आई थी, वो कैसी थी, तो नाना गुणहानि 2 हमने 6 बार आपस में गुणा किया था तो मिला। अंतिम गुणहानि का द्रव्य सैने 6300 और एक कम का उसकी वैल्यू कितनी, 63, यानी वो कितना आया था, 100 आया था। उपांत गुणहानि का कितना आया, 200 आया। अभी 950 पृष्ठ पर आना, पहले गुणहानि का द्रव्य स डिवाइडेड बाय एक कम का वैल्यू थी 100 और उसको अ डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू होती है 64 द्वितीयांश यानी 32, तो ये 3200 आ गए। उसकी वैल्यू डालेंगे ना 100 मल्टीप्लाइड बाय, यानी 100 को गुणा करना 64 डिवाइडेड बाय 2 से, हाँ तो 3200 आ गए। यहाँ लिख के बताऊं क्या, हाँ लास्ट देखो, ये जो अभी हमने यहाँ लिखा है ना, स डिवाइडेड बाय घाटी ओ, घाटी यानी कम अ मल्टीप्लाइड बाय अ द्वितीयांश, यानी कहाँ कैसे लिखा है वहां पर, स यानी पूरा द्रव्य, एक कम अन्योन्य भ्रष्ट राशि, ये तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य मिला हमको, और उसको अ बाय 2 से हमने गुणा किया, तो ये स की वैल्यू हमारी 6300 थी डिवाइडेड बाय 63, हाँ माइनस 1 करके बताया, मल्टीप्लाइड बाय अ की वैल्यू कितनी है, 64 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ 100 आ गए। कि यहाँ 32 आ गए, तो 3200 आ गए ना। अमूल ख्याल में आई बात? इसलिए हम वैल्यू डाल रहे हैं कि थोड़ा समझने में आसान हो जाए। उसके आगे डिवाइडेड बाय, यानी पहले में क्या हुआ, 100 × 32, 3200। अब उसको गुणहानी से भाग देना है। गुणहानी की वैल्यू कितनी है, 8, यानी डिवीजन में 8 चले जाएंगे। यानी 100 × 32, 3200 डिवाइडेड बाय 8 कितने हो जाएंगे, 400। ये क्या हुआ, मध्य धन आया, नीचे के पहली गुणहानी का मध्य धन आया। यहाँ तक बात समझ में आई दिव्या बेन? हाँ, आगे बढ़ेंगे ना सुशीला बेन। हाँ, अभी उसके आगे क्या करना है, तो दो गुणहानि में से कुछ कम करना है हमको। तो दो गुणहानि में से क्या कम करना है, तो गुणहानि में से एक घटाओ और दो से भाग दे दो, और जो संख्या आएगी वो दो गुणहानि में से कम कर दो। अभी हम पहले इसकी बात पढ़ेंगे, फिर अपने फिगर्स वहां डालेंगे। दो गुणहानी माइनस एक कम गच्छ का आधा, उसकी वैल्यू क्या आई। देखो इज इक्वल टू इसलिए नहीं डाला कि वो भी किसी की साइन होती है ना कभी कभी जगत प्रसर की वगैरह, इसलिए वो एरो डाले हैं कि उसका अर्थ क्या होगा। दो गु माइनस, एक गु माइनस वन ब्रैकेट में डाला और डिवाइडेड बाय टू, उसको और सॉल्व करेंगे अभी, ब्रैकेट निकाल देंगे तो ब्रैकेट का माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू कैसी है कि दो गु माइनस गु डिवाइडेड बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि ये जो दो है छेद वो दोनों के लिए समान है, वो दोनों को अपना अपना छेद दे दिया। तो यहाँ दो में से आधा गया, कितना रह गया, डेढ़। तो गु तीन द्वितीयांश रह गया और प्लस एक द्वितीयांश। अभी ऐसे करना, यहाँ पर अभी दोनों का समान है, छेद समान है ना, तो नीचे छेद लिख दो कॉमन और गु तीन प्लस एक कर दो, तो गु तीन प्लस यानी वो ऊपर वन प्लस हो जाएगा। ख्याल में है क्या कहिया, गु तीन प्लस वन और नीचे डिवाइडेड बाय टू रह गया। अभी अपने थोड़े फिगर्स डालेंगे यहाँ पर। दो गुणहानि के लिए क्या लिखना, 16। एक कम गच्छ का, हाँ नहीं नहीं समझने दो ना, एक कम गच्छ का आधा है ने 7/5, वो कैसे है कि 16। अभी ये बीचों का डालो या नहीं डालो कुछ भी, फिर भी डालते डालते चले जाएंगे। 16 माइनस गु माइनस एक द्वितीयांश है, 7/5 तो हमने निकाला ही था इसको, तो उसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, 2 × 16 में से आधा निकल गया यानी 12 रह जाएगी ना। नहीं समझे, 2 × − 2 × 2 कितने हो गए, डेढ़ गुणहानि, यानी कितने, एक गुणहानि होती है 8 की, डेढ़ गुणहानि 12, तो 12 प्लस आधा 12.5 हो गए। बोर्ड पे लिखना है आपको, संख्या में चाहिए कि कैसे चाहिए, संख्या में चाहिए। देखो दो गुणहानि की वैल्यू कितनी है, 16। 16 में से क्या माइनस करना है, एक गुणहानि में से पहले एक घटाओ, कितने रह गए, 8 में से एक घटाओ, 7 रह गए, 7 और नीचे 2 का भाग दे दो। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, समच्छेद, बहुत अच्छा, यानी इसके नीचे भी 2 लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लायर में भी 2 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आई, ये 32 हुए, 32 में से 7 गए, कितने रहे, 25, 25 द्वितीयांश यानी 12.5। वहां अलग पद्धति से किया है ना। यहाँ ऐसा ही करना है, गु तीन प्लस वन कितने हुए, गु की वैल्यू है आठ, आठ गुना तीन चौबीस, चौबीस प्लस एक पच्चीस, द्वितीय अंश। उसकी वैल्यू वहां डालो, यानी आठ इंटू तीन, ऊपर वन प्लस था और डिवाइडेड बाय टू था, है ना। यानी गु तीन प्लस वन करके बाद में डिवीजन में लेना है दो, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि ये गु तीन द्वितीयांश में आधा बढ़ाया था। अभी आगे यहां तक क्या मिला हमें, ये जो संख्या आएगी इससे भाग देना है मध्य धन को। ये जो हमने दो गुणानी में से जो कुछ माइनस करके जो संख्या निकाली है, अभी अपना गणित पूरा नहीं हुआ, क्या करना है इससे, मध्य धन हमने जो 400 निकाला था ना ऊपर, उससे भाग देना है उसका, उसको इस संख्या से भाग देना। देखो पहली गुणानी का चय, चय कैसे निकलेगा अभी, तो इज इक्वल टू मध्य धन, मध्य धन में लिखना 400 उसके नीचे, और डिवाइडेड बाय अभी हमने कितने निकाले थे 25 द्वितीयांश, तो वो कैसे लिखना, ऊपर पहले लाइन में मध्य धन लिखा था, देखो संदृष्टि में देखना, हम तो फिगर्स में तो समझ गए, उसी पेज पर पहली लाइन में मध्य धन के आगे क्या वैल्यू लिखी थी, स को एक कम अ से भाग दिया था, अद्वितीयों से गुणा किया था और गु से भाग दिया था, वो वैसे की वैसी संख्या यहाँ लिख दी हमने, और फिर भागहार में क्या लिख दिया, वन प्लस गु तीन उसका आधा, आ गई ना संदृष्टि, अपने हिसाब से 400 डिवाइडेड बाय 25 द्वितीयांश, यानी 400 मल्टीप्लाइड बाय, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दो 25 अंश करेंगे, तो कितनी आई वैल्यू उसकी, 32 आ गई, ये अपना चय आ गया। यहां तक समझ में आई बात, चय निकालने के लिए थोड़ा अटपटा गणित है, पहले क्या किया, पहले जो नीचे की गुणहानि का पूरा द्रव्य निकाला 3200, फिर उसका मध्य धन निकाला गुणहानि का भाग देकर, जो 400 आया था हमने अलग रखा, उसके बाद क्या किया, दो गुणहानि में से हमने एक घाटी गच्छ का यानी गुणहानि का आधा माइनस किया, 12.5 मिले हमको, यानी 25 द्वितीयांश, उससे मध्य धन को भाग दिया, तो हमें क्या मिला, चय, कहाँ का, नीचे के पहली गुणहानि का, हर एक गुणहानि का अपना चय अलग होगा, क्योंकि हर एक गुणहानि का मध्य धन अलग होगा, ख्याल में आई ना, यहाँ मध्य धन 400 है, हाँ बाकी ऊपर चले जाओ तो मध्य धन भी कम होगा, तो चय भी आधा आधा होता चला जाएगा। अब चय तो निकला, अभी हमने पहला निषेक कितना है उसको निकालना है, अब आगे तो आसान है, ये चय निकालने के लिए जरा अटपटा है, पहली गुणहानि का पहला निषेक इज इक्वल टू क्या लिखा है, चय गुना दो गुणहानि, आपने कल वही लिखा था ना पेज पर, पहला निषेक निकालते समय चय को दो गुणहानि से गुणा करना, तो हमारा चय अभी अभी ऊपर लिखा था, ऊपर की लाइन में संदृष्टि में 32 तो हमें मालूम है, 32 को 16 गुणा करेंगे तो 512 हमारा पहला निषेक हो जाएगा, 32 × 16, और यहाँ कैसे लिखना, अभी अभी जो हमने मध्य धन को वो भाग दिया था, वो चय जो आया था, वो चय ऐसा का ऐसा लिखो और उसको गु दो मल्टीप्लीकेशन में ले लो, बाकी वैल्यू तो इसी लिए है, ख्याल में आई यहाँ तक बात, आगे बढ़ेंगे। अब ये तो पहला निषेक निकला, अंतिम निषेक निकालने के लिए हमने क्या देखा था, वाह कल आपने लिखा था, चय गुणा, बहुत अच्छा है, गुणहानि प्लस वन, यहाँ यहाँ लिखा है, पहले गुणहानि का अंतिम निषेक इज इक्वल टू चय यानी वहां का चय मल्टीप्लायर बाय गु प्लस वन, वो ऊपर वन प्लस की साइन है उसकी, गु के ऊपर वन प्लस की साइन है इज इक्वल टू, अभी अभी हमने पहले निषेक में गुणकार में गु दो लिखा था, उसके बदले बाकी संख्या वैसे ही रखे हुए यहाँ क्या लिखा है गु प्लस वन वाली, वो गु दो के बदले गु प्लस वन लिखा। अब किसी भी गुणहानि में यही फॉर्मूला होगा क्योंकि उनका अपना अपना चय अलग होगा, परंतु आगे मल्टीप्लीकेशन किसके करना, पहले निषेक के लिए गु दो से गुणा करना और वहां के अंतिम निषेक के लिए गु प्लस वन से गुणा करना, तो किसी भी गुणहानि का पहला और अंतिम निषेक उसके चय के प्रमाण में आ जाएगा। यहां तक बात ख्याल में आई, आगे बढ़ेंगे। अभी इस रचना का यंत्र ऐसा जानना, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। प्रथम गुणहानि का सर्व द्रव्य का प्रमाण क्या लिखा है, वो कैसे निकाला था हमने, इसी 950 पेज पर सबसे ऊपर के पहले लाइन में विशेषार्थ में जो लिखा था, पहले गुणहानि का द्रव्य लिखा था। यहां भी प्रथम गुणहानि ऊपर के कॉलम का पहला नाम क्या है, प्रथम गुणहानि, और नीचे उसे लिखा है सर्व द्रव्य प्रमाण, वही फिगर है ना जो हमने 3200 निकाली थी। स को एक कम अन्य व्यस्त राशि से भाग दिया था और अन्य व्यस्त राशि के आधे से गुणा किया था, तो हमें पहले गुणहानि का द्रव्य मिला था। उसके आगे की गुणहानि, द्वितीय गुणहानि का द्रव्य क्या लिखा है वहां पर, उसे और आधे से भाग दिया यानी दो से भाग दिया, और अ को चार से भाग दिया था। उसके आगे ऐसे जीरो जीरो का अर्थ होता है बीच वाले, इसी तरह से उसके गुणा आधा आधा होता चला जाएगा। उपांत गुणहानि का कैसा होगा, तो उसको स को एक कम अ से भाग दिया और दो से गुणा किया, जैसे हमने सौ से दो सौ किया था, और अंतिम का क्या हुआ, स को एक कम अ से भाग दिया। अंतिम गुणहानि की तरफ से अगर हम देखेंगे तो वहां जो है उससे दो गुना दो गुना दो गुना, और पहली गुणहानि में कितने गुना किया, अन्य व्यस्त राशि से आधे प्रमाण से गुणा कर दिया, ये हो गया। आदि निषेक कैसे निकाला था, तो जो हमने अभी चय निकाला था उसको गु दो से गुणा किया था, और अंतिम निषेक कैसे निकाला था, ये जो चय निकाला था उसको गु प्लस वन से गुणा किया। ऐसे ही हर एक गुणहानि में होगा, ख्याल में आई बात। उस गुणहानि की वहां वैल्यू लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं 951 पृष्ठ। यहां प्रथम गुणहानि के द्रव्य निषेक आदि को दो का भाग देने पर द्वितीय गुणहानि के द्रव्याधिक जानने, यानी द्रव्य भी आधा होता है, पहला निषेक भी आधा होता है, अंतिम निषेक भी, अंतिम निषेक से अंतिम निषेक वो भी आधा आधा होता है। आठ निषेक की हम गणना करेंगे, पहले गुणहानि के पहले निषेक से दूसरे गुणहानि का पहला निषेक आधा होता है, पहले गुणहानि के द्वितीय निषेक से दूसरे गुणहानि का द्वितीय निषेक आधा, यानी उसका द्रव्य भी आधा, उसका चय भी आधा, यानी सभी प्रमाण आधा आधा होगा, टोटल द्रव्य भी आधा देखा था हमने, इसलिए कहते थे द्रव्याधिक आधे आधे जानने हैं। आधे के लिए कहा दो का भाग देने पर द्वितीयादि द्वितीय गुणहानि के द्रव्याधिक जानना, और अंतिम गुणहानि के द्रव्य आदि को दो से गुणा करना, उल्टी तरफ से अगर हम आएंगे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो दो से गुणा करने पर उपांत गुणहानि के द्रव्याधिक जानना, सौ से दो सौ हो जाएंगे और उसका पहला निषेक भी दो गुना होगा, अंत निषेक भी नीचे दो गुना होगा, इस तरह से। मध्य गुणहानि के द्रव्याधिक में बिंदी की संदृष्टि जानी, ये टेबल कैसे पढ़ना उसके लिए ये सब है। मध्य गुणहानि के हर एक की वैल्यू नहीं लिखी है, वहां बिंदी लिखने ने उसी क्रम से नीचे से ऊपर जाएंगे तो आधा आधा, ऊपर से नीचे आएंगे तो डबल डबल दो गुना। पुनश्च अंक संदृष्टि द्वारा द्रव्य निषेक आदि की रचना तथा कर्म का सत्व दिखाने के लिए, सत्व ने सत्ता में पड़ा हुआ, क्योंकि ये तो हमने एक समय की बात देखी थी, परंतु सत्ता में तो डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध पड़ा रहता है हमेशा, उसको कहेंगे सत्व की अपेक्षा दिखाने के लिए। अंक संदृष्टि अपेक्षा त्रिकोण यंत्र रचना टीका में लिखी है वह जानना। टीका ने जो वहां डिस्क्रिप्शन जो है हमने समय ज्ञान चंद्रिका जीव कांड पढ़ा था, ये जीव कांड की अर्थ संदृष्टि है, और हमने जो टेक्स्ट पढ़ा था वहां तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आया था। हमने भी अभी 6300 और वो सब अंक लेके जो मूल पुस्तक में थे वही अंक लिए थे, यहाँ पर वो हमने देख लिए। त्रिकोण यंत्र में नीचे से लेकर 48 पंक्तियां हैं। देखो यहां क्या कहना चाहते हैं, अभी सत्व की बात है, सत्ता में पड़े हुए उसकी बात है, तो हमने 48 समय वाली स्थिति देख ली है, इसलिए यहां 48 पंक्तियां। पहले इसको पढ़ेंगे थोड़ा और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। उनमें एक एक पंक्ति रूप, एक एक समय संबंधी, एक एक निषेक जानना, आठ पंक्तियों के समूह को गुणहानि संज्ञा जाननी, सो यहां त्रिकोण यंत्र का जोड़ कहते हैं। अभी यहां क्या समझने जा रहे हैं उसको जरा देख लो। अभी तक जो हमने बात देखी थी वो एक समय प्रबद्ध की देखी थी। हर समय नया नया समय प्रबद्ध आता है, उसमें से कुछ निशे खिर कर चले जाते हैं और बाकी सत्ता में पड़े रहते हैं। तो हमने 48 का तो हिसाब नहीं लगाएंगे, अभी 5 या 6 का लगाएंगे। जैसे यहां किसी कर्म की स्थिति बांधी 6 निशे, अभी हम जरा इस आबाधा को गौण कर देते हैं, यानी जिसकी जिसकी आबाधा बाद में पूरी होगी ऐसे, यानी यहां ये 6 निशे बांधे, हर समय हम उतना ही बांधा इस तरह से पकड़कर उसकी रचना देखेंगे। दूसरे समय में बांधे, ये समय बीत गया ना, दूसरे ये सब सत्ता में पड़े हैं, इसमें से एक निशेक खेरेगा अपन, बाकी तो सत्ता में रहेगी। दूसरे के ये भी ये 6 निशे हम यहां देखेंगे, कितने हुए ना, 3 3 6। ये तीसरे समय में बंधे हुए, ये चौथे समय में बंधे हुए, ये 5वें समय में बंधे हुए, एक एक समय बाद में बंधे हैं ना, इसलिए हम ऊपर देख रहे हैं, और एक रह गया ना यहाँ नीचे बढ़ाते इसको। चल में आई ये बात, हाँ ये यहाँ एक ऊपर। अब ये तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये अभी बंधा है ना, और इसका उदय शुरू होगा तब की बात है, ये पहले खिर चुके हैं। ये पहले बंधे थे, उसका एक निषेक बाकी है, ये अलग अलग समयों में बंधे हुए सबका एट अ टाइम अभी उदय चल रहा है, और ये बाकी ऊपर पड़े हैं सत्ता में, और ये चला जाएगा परंतु नया और बंधा जाएगा, ऐसे ही होते रहेगा, अभी हमेशा इतने परमाणु तो सत्ता में रहेंगे, हम तो 6 का हिसाब लगा रहे। तो इसका एक निषेक है, सब मिलके कितने हैं, 6। एक पूरा समय प्रबद्ध लेंगे तो भी कितने हैं, 6। यानी उदय रूप भी एक समय प्रबद्ध होता है और बंधने भी एक समय प्रबद्ध होता है, ये बात ख्याल में है। किसी समय में उदय कितने का होगा, कि कोई पूर्व में बंधा हुआ उसका एक निषेक जो अंतिम है उदय रूप है, किसी के उपांत निषेक उदय रूप है, उसके 2 निषेक सत्ता में पड़े हैं, किसी के 3 निषेक सत्ता में पड़े, उसका ऊपर से 3रा निषेक उदय रूप है, किसी के 4 निषेक सत्ता में, किसी के 5, किसी के सभी, अभी उसका पहला ही निषेक उदय रूप है। अभी यहां 48 समय लगा लो या पूरे कोड़ा कोड़ी का हिसाब करो, ऐसी ही परिस्थिति हमेशा रहेगी। 48 समयों की स्थिति मानकर यहां ये सारा हिसाब बताने वाले हैं। यह हमने 6 का हिसाब किया तो वर्तमान में पहली पंक्ति में कितने हो गए, 6। दूसरी पंक्ति अभी सत्ता, वर्तमान में सत्ता की बात चल रही है, दूसरी पंक्ति में कितने हैं? पांच है। तीसरी पंक्ति में चार है, चौथी पंक्ति में तीन है, फिर दो है, फिर एक है। यही बात यहां समझा रहे हैं। अब पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी यहां यह अंतिम निषेक है और वो पहला निषेक है। यहां क्या होगा? यह अंतिम हो जाएगा सत्ता में और वो पहला है। तो ये जो पहला सत्ता में यहां जो पढ़ा है, ये समय प्रबद्ध का दूसरा है। यानी समय प्रबद्ध का पहला निषेक इस लाइन में नहीं है। थोड़ी हमारे को वैल्यू देते हैं, क्योंकि नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा है। जैसे हमने देखा था ना, हम इसको इतनी ही संख्या देंगे, चार, छः, पाँच, चार, तीन, दो और एक। ऐसा नहीं होता है, मगर फिर भी हम समझने के लिए देते। तो अभी इस टोटल कितनी है इसके? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, इतना द्रव्य हुआ ना? कितना हुआ? हाँ, कितने हुए इतना टाइम? 21 हो, 21 हो जाएगी, टोटल 21 है। ऐसी टोटल करो, ये लास्ट वाला इसकी वैल्यू एक है, इसकी वैल्यू दो है, इसकी एक है, इसकी वैल्यू तीन है, इसकी चार है, इसकी पांच है। ऐसे भी टोटल करो, ये भी 21 है। दूसरे लाइन में क्या पोजीशन है? इसकी वैल्यू एक है, इसकी दो है, इसकी तीन है, इसकी चार है, इसकी पांच है। वहां छह वाला नहीं है, छह वाला नहीं, इतना समझ लो। यानी यहाँ का छह हर एक लाइन में अलग अलग होगा, यहाँ पहला निषेक नहीं है, यानी वो छह वाला इसमें नहीं है। इसमें क्या पोजीशन होगी? ये एक होगा, ये दो होगा, ये तीन होगा, ये चार होगा। यहाँ पांच वाला भी नहीं और छह वाला भी नहीं है। यहाँ क्या होगा? ये एक है, ये दो है, ये तीन है। यहाँ चार वाला, पांच वाला, छह वाला नहीं है। यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन चार पांच नहीं है, और यहाँ मात्र एक है। अब इसकी टोटल करेंगे तो हमें सत्ता के टोटल द्रव्य को मिलेगा हमको। यानी क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अटपटा है ना, क्योंकि वो फिक्स डिफरेंस नहीं है चाहे कि हम इतना चाहे कम कर दिया। तो यहाँ इस पद्धति से बताया है कि मान लेते कि सभी में सभी निषेक है। यहाँ छह है ना, यानी 21 टोटल हो गई वहां पर। वैसे सब में अगर मान लेते हैं और बाद में ऋण राशि, यहाँ एक छह वाला निषेक नहीं है, यहाँ पांच वाला नहीं है, ये चार वाला, वो बाद में उसमें से माइनस करेंगे, उसको ऋण बनाएंगे। ये पद्धति यहाँ अपना ही है। अभी इसको समझ कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो आज तो पूरा होने वाला नहीं है, फिर भी थोड़ी शुरुआत करते हैं। और यहाँ तो 48 में समझाया है मैंने, तो यहाँ 6 में समझाया, क्योंकि 48 का फिर वो हिसाब कौन ख्याल में रखेंगे, है ना? हाँ, मूल में कहाँ? ओरिजिनल में, एक्चुअली यथार्थ में कितने हैं? जो हमने देखे ना, कितने हो गए अभी? 70 कोड़ा कोड़ी का किसी ने बंद किया है। तो हर समय में बंधे हुए का एक एक निषेक पड़ा है। किसी भी कर्म में वर्तमान में जो उदय आता है, तो कितने कोड़ा कोड़ी के प्रत्येक समय का एक एक निषेक पड़ा है। जितना हम एक समय में बांधते हैं ना, एक समय में कितने बनते हैं? एक समय प्रबद्ध अनंत का, और उसकी निषेक रचना कितने सालों की होती है? अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की होती है, क्योंकि कम ज्यादा बनते हैं। उदय में भी उतने ही समयों के अलग अलग निषेक वर्तमान में उदय रूप रहते हैं हमेशा। कभी भी वर्तमान में एक समय में बंधा हुआ एट ए टाइम उदय में आए, ऐसा नहीं होता। तो ये निषेक हर समय अलग अलग समयों में बांधा था, तो परिणाम भी अलग अलग थे कि नहीं? तभी तो उसमें अनुभाग भी अलग वैरायटी होगी कि नहीं होगी? तो वर्तमान में जो उदय रूप आ रहे हैं, वो किस कर्म का कैसा टर्न हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। ये अलग अलग समय में बंधे हैं और उसका एग्रीगेट फल मिलने वाला है। मिला जुला। तो हम यहाँ देखेंगे, हमें तो यहाँ तो गणित से कुछ मतलब है, हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ देखिए लिखा है ना समय ज्ञान चंद्रिका जीव कांड, ऊपर के पैराग्राफ में नीचे से चौथी पंक्ति, त्रिकोण यंत्र में नीचे से लेकर 48 पंक्तियां है, यहाँ हमने 6 पंक्तियां की है, वहां 48 है क्योंकि स्थिति हमने 48 मान ली है। उनमें एक एक पंक्ति रूप, एक एक समय संबंधी, एक एक निषेक जानना। ये एक समय में एक, ये सत्ता का निषेक है। पहले जो हमने देखा था ऐसा एक समय में बंधे हुए निषेक रचना थी, और यहाँ जो त्रिकोण रचना है वो सत्ता वाली है, इसको कहेंगे सत्ता का निषेक। सत्ता का निषेक सबका मिलकर ये कहलाएगा 1+2+3, ये 6 तक हमने 6 तक समझाया है, ये पूरा मिलकर ये सत्ता वाला पहला निषेक, ये पूरा मिलकर सत्ता वाला दूसरा निषेक, ये सत्ता वाला तीसरा निषेक, ऐसे 48 पंक्तियां करनी। यहाँ की अंक संदृष्टि में हमने 48 मान लिया। देखो उनमें एक एक पंक्ति रूप, एक एक समय संबंधी, एक एक निषेक जानना। 8 पंक्तियों के समूह को गुणहानि संज्ञा जाननी। यहाँ भी वो गुणहानि जो जितनी है, यहाँ तो हमने 8 समय मान ली है, वहां 8 समय होकर वो भी आधा हो जाएगा। सो यहाँ त्रिकोण यंत्र का जोड़ कहते हैं, ये तो हमने समझने के लिए 6 ही मान लिए है, परंतु वहां उसका गुणहानि वगैरह सब मिलकर जो कुछ उसका जोड़ कितना होता है, उसको कैसे करना वो जोड़, वो यहाँ सिखाएंगे। वहां प्रथम ही हीन संकलन अपेक्षा से कहते हैं, यानी घटती हुई हीन संकलन है, घटते हुए पहले पढ़ेंगे, और जब तक आप नहीं समझेंगे हम पढ़ते चले जाएंगे, बार बार बताएंगे आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। इतना धैर्य रखा, इतने कितने 950 पेजेस आपने सुने हैं, अब कुछ नहीं है, थोड़े से बाकी है, सबको एक एक अवार्ड मिलना चाहिए। हम जब लक्ष्मी ने बताया था आप शुरू करो, हमने बोला तो शुरू शुरू में सब लोग आएंगे, बाद में कोई रहने वाले नहीं है, अभी तक टिके हैं सब। हाँ देखो नीचे से लेकर 8 पंक्ति रूप जो प्रथम गुणहानि, यानी जहां जाके द्रव्य आधा होता है, उसमें जो द्वितीय आदि पंक्ति में निषेक घटे, यहाँ हमने देखा ना एक एक निषेक घटा, परंतु वो समान रूप से नहीं घटा है अभी, यहाँ वो पहले वाला बड़ा निषेक नहीं रहा 6 वाला, यहाँ वो 4 वाला नहीं, वैसे वहां कौन सा नहीं, वो पहले वाला 512 का, क्योंकि हमने जो हिसाब निकाला था पहले निषेक की वैल्यू 512 थी। तो 48 पंक्तियों में पहले पूरे सब 48 की टोटल कितनी हो जाएगी, 6300। दूसरे में क्या कम होगा, वो 512 वाला नहीं होगा, तीसरे में 512 वाला तो नहीं ही होगा, 480 वाला भी नहीं होगा, यानी 512 प्लस 480 कम होगी। अब यही बात यहाँ देखें, तो द्वितीय आदि पंक्ति में निषेक घटे, आदि यानी दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जो निषेक घटे, उनके प्रमाण रूप घटाने योग्य जो ऋण, यानी सभी जो निषेक कम होते गए ना, यानी यहाँ से एक एक जो कुछ कम होते गए, तो ऐसा हम उसका टेबल करेंगे, तो ये सारा क्या कहलाएगा, ऋण। जो इसमें नहीं रहे उसको कहेंगे ऋण। एक एक पंक्ति में जितना कम होता गए उन सब कम की टोटल करेंगे तो सब मिलकर कहेंगे ऋण राशि। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 512 नहीं था, यहाँ 512 नहीं था और 480 भी नहीं था, यानी 512 को दो बार लेना। अगर आपको समझना है 6 लाइन में, 512 को 5 बार ले लो, 480 को 4 बार ले लो, फिर आगे चलकर 448 को 3 बार ले लो, इस तरह से, हाँ वो 16 को 2 बार ले लो, तो इस सब की टोटल करो, ये सब ऋण हो जाएगा। यह बात हम कल देखेंगे, अपना समय हो गया, अभी ये पैराग्राफ की शुरुआत से ही ले लेंगे। जावानी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवानी। सदा नित्य हो। अमोल